This podcast is created as a part of the Podcast Lab by India Film Project in association with Anchor by Spotify. Is your mom also nagging you to learn the script of your mother tongue? Why is it important anyway? क्या आपके पेरेंट्स भी एकदम इरिटेट बौखला जाते हैं जब आपने व्हाट्सएप पे उन्हें मुझे MUJHE की तरह लिखा हो? Have you ever read classic literature in your mother tongue? हेलो फेलो पीपल हु ग्रू अप विद द इंटरनेट. बहुत आसान है इंग्लिश के पीछे भागना और नोइंग दैट इज द ग्लोबल लैंग्वेज टू नो द ग्रामर एंड परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इज देयर अ कॉस्ट टू नोइंग योर कॉलोनाइजर्स टंग मोर देन योर ओन? इंडिया में करीबन 121 भाषाएं बोली जाती हैं विद 22 ऑफ देम गेटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस. सो इट्स नो सरप्राइज दैट इंडिया एंड डाइवर्सिटी डेफिनेटली गो हैंड इन हैंड. And the way the world is going back to the Indian roots with turmeric latte and yoga, it's time that we should reconsider our stance on not knowing our mother tongue in its full glory. Aaj ke episode mein, I will ask my mother a few important questions, discussing the importance of language. Ek bhasha ke marne pe aur kitni cheeze hain jo uske saath nahi rehti hamare saath. And I was trying to video call her. Who keeps her internet off anyway? Also, big time disclaimer, as I think it must have been evident, both me and my mother come from Hindi speaking belts. So no, it's not, we're not trying to promote Hindi in any way. It's just that that is our mother tongue. So wherever, unless the context really specifies, Hindi usually encompasses all the mother tongue that you've grown up and you're comfortable in. हम आपको वीडियो कॉल कर रहे थे, आप उठाए नहीं. नेट कौन ऑफ करता है? बैटरी लाइक एक्सट्रीमली डाइंग, नोबडी स्विचेस देयर इंटरनेट ऑफ. ठीक है, ओके, योर लाइफ योर रूल्स. आई वॉज रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग आर्टिकल बाय चेतन भगत विच सेड जो हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, मतलब एज आर जनरेशन एंड योर जनरेशन की जो बात छिड़ी ही है, तो इसमें वो वाला है दैट ही गेव दिस एंगल वेयर वी शुड लेट गो ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड हम उसे हिंदी को भी अब रोमन स्क्रिप्ट में लिखें, जैसे बेसिकली हमारी जेंजी लिखती है वेयर मुझे इज MUJHSE उस हिसाब का. सो देवनागरी को फॉरगो करके वी शुड यू नो इन ऑर्डर एंड द रीजन ही व्हाट ही गेव वाज कि हमें इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिंदी वी शुड लेट गो ऑफ द स्क्रिप्ट एंड इनकॉर्पोरेट दैट इनटू व्हाट इज द मोस्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज. This made me a little uncomfortable. और as a lawyer in me ना, मैं वो ऐसे नब्ज नहीं पकड़ पा रही हूँ कि क्या गलती लगी है इसमें, क्योंकि वो जब तक आप क्या बता नहीं पाओगे कि ये किस लॉ से कॉन्ट्रवीन कर रहा है या कहाँ गलत है, तब तक ऐसे ना मन नहीं मान रहा वाली बात है. सो ऑब्वियसली आई टर्न टू यू कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट.
कानूनी रूप से क्या है क्या नहीं ये तो मतलब हम नहीं बता पाएंगे, यू आर द बेटर पर्सन टू टेल अबाउट लॉज एंड ऑल. लेकिन ये है कि क्योंकि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रहा है और जर्नलिज्म रहा है, तो मुझे ये लगता है कि जब हम संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए. एक ये कि संस्कृति जो है, जिसे हम कल्चर कहते हैं अंग्रेजी में, वो कभी भी स्टेग्नेंट नहीं रहती, उसका नेचर ही डायनेमिक है. और आप जो संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, जैसे भाषा है, परिधान है, खान पान है.
परिधान मतलब परिधान मतलब
कपड़े, जो जैसे आप कपड़े पहनते हैं,
अच्छा.
जिस प्रकार की ड्रेसिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो समय के साथ बदलती है, समय के साथ राजनीति बदलती है, समय के साथ जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो बदलती है, और ये सारी चीजें उन चीजों को रिस्पॉन्ड करती हैं. यहाँ तक कि अब तो अगर आप देखें तो ग्रेजुअली क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, तो जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा, उस प्रकार जिस प्रकार की ज्योग्राफी में आप रहते होंगे, निश्चित रूप से आपके पहनावे में वो सारी चीजें आएंगी. और भाषा भी जो है वो ऐसा कहीं से ड्रॉप नहीं होती है, वो धीरे 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 एक कम्युनिटी, एक समुदाय के लोग आपस में विकसित करते हैं, उनकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनती है. तो रीच आउट करने के हिसाब से अगर चेतन भगत ये कहना चाहते हैं कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसको हमको लेट गो कर देना चाहिए, तो उसमें ये समझना होगा कि एक लंबे समय तक जो है वो हमने भारत में हिंदी भाषा की अवहेलना, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से अब ये हो चला है कि सारे ऐसे लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और तो उनको लगता है कि वो उसी में वो सहज रहेंगे, तो कम से कम हिंदी इस तरह से तो बच जाएगी। लेकिन मैं भी तुम्हारी तरफ हूँ इस मामले में, भले ही हमारे में पीढ़ियों का अंतर है, कि मैं ये तो नहीं चाहूंगी कि हिंदी भाषा जानी चाहिए और देवनागरी स्क्रिप्ट तो कतई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि चेतन भगत जो बातें कर रहे हैं वो बहुत जो है ना मेट्रोपॉलिटन या सिटी अर्बन सेंट्रिक बात है। अगर आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो और अगर आप उससे 10-15-20 किलोमीटर अंदर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का बोलबाला है। अगर वो हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ पर अभी भी हिंदी ही बोली जाती है, हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट की ही एक्सेप्टेंस है ना। तो अगर ये यथार्थ है, और जिससे हो सकता है कुछ लोग दूर हों क्योंकि वो शहरों में और बड़े शहरों में रहते हैं और वैसे ही लोगों के साथ डील करते हैं, तो उनको ये लगता होगा कि शायद अंग्रेजी जो है वो रहने पर ही हिंदी को बचाया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे लगता है वो ये कि जब तकनीक के सहारे ही भाषा को आगे बढ़ना है तो और सॉफ्टवेयर पावर के रूप में हम पूरी दुनिया में जाते हैं, तो क्या ऐसी ऐसे रास्ते नहीं निकाले जा सकते जहां पर हिंदी टाइपिंग की व्यवस्था और वो सारी चीजें हो जाए, जो गूगल कर रहा है उस पे उसने बहुत काम किया, सारे रीजनल भाषाओं में अब आप अपने संदेश भेज सकते हैं और इमोजी हिंदी में क्रिएट किए जा रहे हैं और हिंदी क्या कि हर सारी क्षेत्रीय भाषाओं में क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान की जनसंख्या एक बहुत बड़ा मार्केट है गूगल के लिए भी। तो इस तरह के प्रयास करके हमको अपनी भाषा को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि देखो ना भाषा केवल भाषा नहीं होती, मतलब जो सवाल आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जब मैं कम उम्र थी तो मेरे भी दिमाग में आया था कि जब आप ये कहते हैं कि कल्चर डायनेमिक है, संस्कृति बदलते रहती है, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब एक एक भाषा मरेगी दूसरी नई भाषा जन्म ले लेगी, तो हम चीजों को होल्ड क्यों करना चाहते हैं, हम क्यों वापस इतिहास में जाना चाहते हैं और भाषाओं को बचाना चाहते हैं और उनके संरक्षण की बात हम करते हैं। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि जब भाषा मरती है तो वो भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, वो भाषा जो है वो पूरी की पूरी एक संस्कृति को, पूरे के पूरे एक समुदाय के इतिहास को अपने साथ रखे होती, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भाषा को बचाएं, उनके आपस के बातचीत के तौर तरीके, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं, तो जब वो एक खास तरह की भाषा का आपस में इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो फीडबैक हमको मिलता है ना, उससे ये समझ में आता है कि वो किस तरह के लोग थे, किस तरह का जीवन जी रहे थे, उनके आपसी संबंध कैसे थे, वो एक दूसरे को कैसे एड्रेस कर रहे थे। एक छोटा सा उदाहरण दू, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं अभी, तो वो उनके के लिए ऐसे स्पेसिफिक शब्द नहीं है कि मौसी अलग हो और बुआ अलग हो, है ना, ऐसा है ना, चाची अलग हो, अंकल और आंटी शब्द है, मतलब चाचा के लिए अलग और मौसा के लिए अलग और बुआ जी के लिए अलग, जो है वो उस तरह के शब्द नहीं है। तो यहाँ जब आप हिंदी में आते हैं तो आप देखते हैं कि नहीं, बुआ का एक स्पेसिफिक मतलब है, आप बुआ कैन नॉट बी रिप्लेस बाय मौसी, मौसी कैन नॉट बी रिप्लेस बाय चाची, है ना। तो ये इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो आपकी पारिवारिक संबंध हैं उनमें हर एक संबंध का कितना महत्व है, उनकी क्या खासियत है ना, और किस तरह से उनको तवज्जो दी जाती है, और आप बहुत ज्यादा ना भी कुछ सोचेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक न्यूक्लियर वर्सेस ज्वाइंट फैमिली कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो भाषा अपने आप में संस्कृति और इतिहास को सहेजे होती है, और इसलिए उसको बचाना, उसका संरक्षण और उसका संवर्धन सब कुछ जरूरी है।
दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट फैक्ट कि हम लोग किसी एक दिन घर पे भी डिस्कशन कर रहे थे, तो इट वॉज अ रैंडम यूट्यूब या फेसबुक पोस्ट, बट उसमें भी ये चीज़ आई थी कि इन इंग्लिश इज जस्ट अ टीचर, अ पर्सन हु टॉट मी समथिंग, बट ऐसे हिंदी में हमारे ऐसे तीन चार चीज़ हैं कि मतलब ऐसे अध्यापक भी हो सकता है, वो शिक्षक भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकते हैं, वो पंडित भी हो सकते हैं, सो दे आर ऑल वेरिंग डिग्रीज। दैट ब्रिंग्स मी टू एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब एक एक सेंस ऑफ वो वाली चीज भी है कि हम क्योंकि हिंदी स्पीकिंग बैठ जाते हैं, लाइक मी एंड यू, व्हाट हैपेंस इन केसेस, और मतलब ये अलग डिबेट है कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बट एटलीस्ट इंडिया के केस में बिकॉज एज अ ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड बिकॉज यू बीन अ ब्रिटिशर्स कॉलोनी, तो इंग्लिश का एक अपना वो है सुप्रीमेसी, अनफॉर्चुनेटली इट इज, कि देयर स्टिल दिस सेंस ऑफ कि ओ माई गॉड कितनी फ्लुएंट इंग्लिश में आप बात कर रहे हो. एंड हिंदी का एक वैसा सा है कि इट्स आर नेशनल लैंग्वेज. इन केसेज वेयर द रीजनल लैंग्वेजेस इन देम सेल्व ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रांग होल्ड, ये साउथ के तो पांचों ही आई थिंक स्टेट्स में है. दिस इज वेरी, मतलब पार्डन मी टू ऑल द पीपल हु आई एम नॉट काउंटिंग, बट आई थिंक दिस इज वेरी हैविली इन इन महाराष्ट्र, इट्स वेरी हैविली इन बंगाल, इट्स ऑल्सो वेरी हैवी इन पंजाब, बट ऑल्सो क्योंकि पंजाब का अब बिकॉज ऑफ पॉप कल्चर यू कैन सॉर्ट ऑफ मेक आउट वॉट दे ट्राइंग टू से. बट इन केसेज जहाँ हिंदी इज बिकम्स अ थर्ड लैंग्वेज एंड अ थर्ड बर्डन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज, और इसमें हम लोग उस पॉपुलेशन को तो ले ही नहीं रहे. मेरी कल एक एडवोकेट से बात हो रही थी हु वॉज अ तमिलियन बट हु ग्रू अप इन बंगाल. आई हैव ऑल्सो मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक हाउस होल्ड की, अच्छा महाराष्ट्र से आए हैं या महाराष्ट्र गए हैं बट दे वर बंगालीज और हैव शिफ्टेड टू बंगाल. तो इन केसेज लाइक दीज जहाँ आपका ऑलरेडी तीन चार लैंग्वेज, घर पर मराठी में बात कर रहे हैं, बाहर दोस्तों से बंगाली में बात करनी है, हिंदी भी सीखनी है, अंग्रेजी भी सीखनी है, अब इसमें अगर ये एडेड मतलब वो आ जाए कि अच्छा नहीं आपको हिंदी भी सीखना ही चाहिए एंड दिस इज हाउ इट इज, तो मतलब डोंट यू थिंक दैट जस्ट पुट्स अ लॉट ऑफ अननेसेसरी प्रेशर.
नहीं, एक शब्द का इस्तेमाल किया तुमने, बर्डन. मुझे लगता है कि बर्डन की बजाय इसको आपको अपनी एक रिच लेगेसी और एक असेट के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि मल्टी कल्चरलिज्म एंड मल्टी लिंग्विस्ट होना ये अपने आप में आपके ना सिर्फ प्रोफाइल को पक्का करता है बल्कि आपको एक्सपोज करता है इतनी सारी नई चीजों के लिए कि आप और समृद्ध होते हैं. और बर्डन मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आप बहुत कम उम्र से इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत सारी भाषाओं को लेकर अगर एक्सपोज रहते हैं तो कम से कम 3 भाषाएं तो हर बच्चा आसानी से सीख सकता है. और इसलिए अंग्रेजी, हिंदी और एक रीजनल भाषा, ये तीनों तो बिल्कुल सहज रूप से सीखी जा सकती हैं और आपको हर भाषा में पारंगत होने की जरूरत नहीं होती. एक भाषा जो आपके घर पर बोली जाती है वो हमेशा आपके दिल के करीब होती है, वो भाषा जिसको आपने फॉर्मली नहीं सीखा होता है लेकिन बस चूंकि आप उस घर में, उस माहौल में पैदा होते हैं तो सहज रूप से आ जाती है, तो वो आपकी एक तरह से क्रिएटिविटी की भी आत्मा की भाषा बन जाती है. और उसके अलावा फिर दो और भाषाएं, तो 3 भाषाओं के लिए तो खुद वैज्ञानिक ही कहते हैं कि वो सहज रूप से हो जाती है. और जितनी जल्दी उस भाषाओं से के सामने एक्सपोज किया जाए बच्चा उतनी आसानी से सीख जाता है. तो ये बल्कि हमको लगता है कि भारत में रहने वाले हर आदमी को गर्व से इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो रीजनल भी अगर में रहते हो तब. एक लेकिन मैं करेक्शन करूंगी कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है. बहुत लोगों को या तो ये गलत फहमी है या ये गुमान है, तो आप इसको शब्द देना चाहो, लेकिन हिंदी जो है वो हमारी जो राजकीय भाषाएं हैं उनमें से एक है, है ना. तो इसलिए बहुत प्रयास हुए हैं जरूर राष्ट्रभाषा बनाने के लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया.
सिंस हम ये बात की हमने कि ये इनफॉर्मली हमने एक घर की लैंग्वेज सीखी है, नाउ आई जस्ट हैपन टू बी इन अ प्लेस वेयर जहाँ घर पे भी हिंदी बोलते थे हम और स्कूल में भी इट वॉज मैंडेटरी फॉर अस टू पिक अप इंग्लिश एंड हिंदी. वॉट हैपन्स इन केसेज वेयर घर पे जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं अपने कलीग्स की बात ले लूँ, अ लॉट ऑफ पीपल माई जनरेशन फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीड द बंगाली स्क्रिप्ट और द तमिलियन स्क्रिप्ट. इन केसेज लाइक दिस व्हाट हैपन्स कि आपको शब्द पता है, आपको लैंग्वेज पता है, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस पता है, यू नो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द फ्लुएंसी ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड राइटिंग द स्क्रिप्ट. इन दोज केसेज आपको नहीं लगता कि मतलब इफ यू चेंज दैट टू अ रोमन स्क्रिप्ट दैट वुड इवेंचुअली हेल्प?
इसमें मुझे लगता है कि देखो फिर वही बात है कि इस पार या उस पार, मतलब वो रिजिडिटी की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर हम एक सर्टेन एज के बाद कोई एक स्क्रिप्ट सीखने की या एक भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं और स्क्रिप्ट सीखना हमको मुश्किल लग रहा है उसमें, और अगर हमको लगता है कि वो अंग्रेजी में या रोमन स्क्रिप्ट में लिखने से हमारा काम चल जाएगा, तो ये जरूरत पर है आपके और आपको किस हद तक भाषा सीखना है, कितने हद तक उसकी जरूरत है, इस पर डिपेंड करता है. तो मेरा कहना ये है कि किसी भी चीज को लेकर वही संस्कृति का और कल्चर का जो है वो डायनेमिज्म भी है, कि उसको लेकर इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है कि हम स्क्रिप्ट तो अपनी ही इस्तेमाल करेंगे. और जो बच्चे कम उम्र से एक्सपोज हो रहे हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे तुम्हारा उदाहरण दूं कि मुझे याद है एक समय में तुम बांग्ला स्क्रिप्ट जो है वो लिखने पढ़ने की कोशिश कर रही थी, एक हद तक जो है वो तुमने किया भी, लेकिन उसके बाद फिर तुम
छूट गया,
दिल्ली शिफ्ट हो गई, है ना. अगर अगर यही तुम शायद अगर कोलकाता जाती तो हो सकता है कि लगातार उस भाषा के जाती, तुम कहीं कहीं लिखी हुई वो दिखती और कहीं तुम्हें पढ़ने की मजबूरी होती, तो वो फिर इम्प्रोवाइज होती जाती. तो डिपेंड, लेकिन ये है आज की तारीख में कि अगर कोई बांग्ला में बात कर रहा है या लिखा है तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई कि वो क्या लिखा हुआ है, आप समझ सकती हो. जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि आप जिस माहौल में रहते हैं तो वो माहौल आपको सुनिश्चित करवा देता है उसकी.
ये तो है, बिकॉज मतलब इवन से इट वॉज अ 1 month इंटर्नशिप इन कैलकटा और ग्रोइंग अप विद अ सर्टन सेट ऑफ पीपल, या मतलब आई बिलीव अ लॉट ऑफ आर रिलेटिव्स ऑल्सो जैसे कैलकटा में रह के फिर एकदम ही बॉम्बे चले गए, तो वही है.
दादाजी तो
एंड
खुद फ्लुएंटली बात
हाँ
करते थे,
हाँ दादाजी भी खैर खूब
क्योंकि
फ्लुएंटली बात
वो
करते थे.
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से ही पढ़े थे ना. तो
आई ऑल्सो थिंक इट्स अ वेरी नैक फॉर लैंग्वेजेस वाली चीज़ होती है, क्योंकि आई हैव ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनका वो था कि नहीं मतलब आई हैड टू वर्क इन हैदराबाद, सो मतलब इट वॉज ईदर तेलुगू और इट वॉज इंग्लिश, देर वॉज नो हिंदी एट ऑल. मतलब आई हैड टू मेक एफर्ट्स टू बी इन देयर लैंग्वेज एंड आई एम लाइक व्हाट इज द बिग डील, अरे हिंदी तो आनी चाहिए. क्यों हिंदी आनी चाहिए भाई, उसको उसको जरूरत नहीं है, उसको क्यों आएगी हिंदी. तो ये एक बड़ा वैसा सा रहता है, तो वही मतलब
कभी 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 नैक भी होता है और कभी कभी एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट भी होता है, क्योंकि एक हमेशा से सदर्न लैंग्वेजेस वालों को डर रहा है कि हिंदी हावी ना हो जाए, क्योंकि ऐसे प्रयास भी जिसमें होते रहे, तो कभी कभी वो भी एक होता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि बिकॉज ऑफ मीडिया फिल्म सीरियल जो है वो हिंदी बहुत सदर्न स्टेट्स में भी भले ही बोली ना जाती हो लेकिन समझते मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लोग हैं. ये तो अच्छी बात है. और ये भी हुआ है कि अभी हम ही लोग खुद इतने रीजनल सिनेमा को एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अमेजन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स, क्योंकि सब टाइटल्स होते हैं, उनका सिनेमा अच्छा होता है तो हम लोग देखना चाहते हैं. तो इस तरह की चीजें तो हो रही हैं.
And it's not even just regional cinema. It's gone global. Where, मतलब we could actually see the Oscar-winning movie Parasite, which is in another language only. मतलब पंजाब के वो साइज का भी नहीं है वो कंट्री, बट उसकी फिल्म को ऑस्कर ऑस्कर मिला. नाउ देव रिलीज अनदर कोरियन शो, वॉट इज इट कॉल, हाँ स्क्विड गेम, वेयर इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मतलब उसकी वजह से दैट हैज ब्रॉट नेटफ्लिक्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू. अनदर पॉइंट आई थिंक जो हम लोग जब कल्चर वाला एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे थे, ये भी था कि फॉर विद अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश हैज हैड द इन्फ्लुएंस एंड द रिचनेस बिकॉज ऑफ द इंग्लिश पीपल, लाइक द ब्रिटिशर्स ऑफ टुडेज टाइम हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस. इस वजह से उनका फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है, इस वजह से उनका इंडियन इन्फ्लुएंस इनटू द लैंग्वेज भी बहुत रहा है. वो जितनी भी जगह उन्होंने कॉलोनीज बनाई, दे हैव मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, दे हैव सक्ड अ लॉट ऑफ द गुड एस्पेक्ट्स फ्रॉम देम. सो वी हैव द वर्ड्स लाइक रेस्टोरेंट एंड फियोन्से इन द इंग्लिश लैंग्वेज, वेयर मतलब वी डोंट लुक इन टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, बट ये सारे फ्रेंच वर्ड्स हैं जो इंग्लिश वालों ने अडेप्ट कर लिए हैं. अ लॉट ऑफ द वर्ड्स लाइक चटनी, पजामा, शैम्पू इंटरेस्टिंगली कम्स फ्रॉम द वर्ड चम्पी, एंड बंगलो कम्स फ्रॉम द वर्ड बंगला. तो इन सारे वर्ड्स का अगर आप ऐसे थोड़ा ओरिजिन देखने जाएं कि दिस इज अ लिटिल टू हिंदी साउंडिंग, सो यू कम टू द basic fact where a lot of words have been extracted into another language altogether. तो वही है. एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम इफ यू गो एंड सी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही बोले जाते हैं. अभी 2 to 3 days अगो जो हमको एक और एक मतलब ओवरवर्क एंड कैपिटलिज्म के बारे में कहीं और आई वॉज वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो, अपेरेंटली इफ देर इज अ लॉट ऑफ वर्क स्ट्रेस इन द 70s एंड द 80s जापान में, वो इतना पॉपुलर हो गया था दैट पीपल हैड अ टर्म फॉर इट. इफ समबडी वॉज डाइंग आउट ऑफ ओवरवर्क, दे हैड अ टर्म फॉर इट कि ही डाइड बाय सो एंड सो वर्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं ही कमिटेड सुसाइड. तो वही है, विद अ लॉट ऑफ कल्चर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस विच हैव अ पर्टिकुलर वर्ड, सो दैट ऑल्सो लीड्स टू अनदर सेट ऑफ एनरिचमेंट इन दैट सेंस.
इसके लिए तो भाषाओं को ओपन होना चाहिए, ऐसा होता भी रहा है, हर भाषा दूसरी भाषा के साथ मिलकर समृद्ध होती है, और अगर भाषा जितनी इसके लिए खुली रहे, अपने आप को स्वीकार्य रखे, उतना ही वो लोगों के बीच पसंद भी की जाती है। अंग्रेजी ने ये किया है और रीजन उनका वही रहा है जो तुमने कहा कि एक समय था जब वो फ्रांस की कॉलोनी थे और बाद में उन्होंने कईयों को कॉलोनी बनाया, और उसका नतीजा ये है कि उनकी भाषा समृद्ध। आज भी देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस साल कौन कौन से शब्द शामिल किए गए, ये आता है। तो ये रिचनेस हिंदी को भी दिखानी चाहिए, कुछ तो उन्होंने दिखाई है, मतलब अंडर कंपल्शन या एक नेचुरल प्रोग्रेशन में, लेकिन इस तरह का एक ऑथेंटिकेटेड आपकी डिक्शनरी हो और उसमें भाषाएं जो है वो शामिल होती जाए, ये किसी भी भाषा के लिए अच्छा होता है उसे बेहतर बनाने के लिए। और एक और चीज जो तुमने कही वो भी बिल्कुल सही है कि एक कुछ कुछ शब्द किसी भाषा में जनरेट होते हैं और उनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है और उसका कोई रिप्लेसमेंट आपको अपनी भाषा में मिलता नहीं, लेकिन वो हालात वो परिस्थितियां जरूर मिलती हैं, तो आप उनको फिर एज एक स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बंद का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो अंग्रेजों के साथ नहीं था, है ना, वो नहीं समझ पाते थे, तो उन्होंने बंद को एज इट इज स्वीकार कर लिया है, बंद शब्द है। अब जलेबी का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है अगर ठीक है, हालांकि वो तो नाउन है फिर भी, लेकिन है कि उन्होंने एज इट इज स्वीकार किया है। तो हमने भी बहुत सारी चीजें वैसे ही स्वीकार की, और ये भाषा का स्वभाव है इसमें, मतलब भाषाएं जितनी खुली रहेंगी उतना ही।
हाँ, बिकॉज आई रिमेम्बर हिंदी लिटरेचर की हमारी काफ़ी किताबों में भी, मतलब एंड दिस यूज टू बी अ वेरी बिग पॉइंट ऑफ डिबेट एट होम, कैसे कैसे इन्होंने लिख दिया है, बट ऐसे काफ़ी अंग्रेजी के टर्म्स भी हिंदी में आए हैं, जैसे स्टेशन हुआ एंड ऐसा आपका स्कूल हुआ, टिकट है, हाँ
स्कूल जो है वो अब मतलब कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा हो चुका है कि आप स्कूल बोलेंगे तो हर कोई समझ जाएगा, विद्यालय बोले तो शायद सवाल उठे कि भाई ये क्या होता है। तो ये है।
What do you feel about it? It's fortunate, it's unfortunate, it's how do we go about it?
It's all about like जैसे जैसे decolonization वाला एक concept आ रहा है हमारे दिमाग में, तो अब चीजों को लेकर फिर से एक जागृति है कि हम अपनी भाषा का, अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन ये फोर्स नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये कि जैसे हमने धीरे धीरे स्कूल को स्वीकार कर लिया, वैसे ही धीरे धीरे अगर पाठशाला और विद्यालय जैसे शब्द आ सकते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज स्कूल अगर हमारा हिंदी का ही हिस्सा बन जाता है तो कोई बुरी बात नहीं।
दिस रिमाइंड्स मी ऑफ पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी के बहुत सारे इंटरव्यूज जब आप देखिएगा ना, तो उन्होंने अपनी ऑडियंस समझ ली है कि ये ऑडियंस है जो ऐसे हिंदी बहुत अच्छी समझ सकती है पर नहीं भी समझ सकती है। सो इफ यू वॉच अ लॉट ऑफ हिज इंटरव्यूज ना, ही इज मोस्टली टॉकिंग इन सबटाइटल्स, कि मतलब आप उनका कम्फर्ट लैंग्वेज और उनका थिंकिंग लैंग्वेज इज हिंदी, राइट? तो उनका मतलब सभ्यता समझते हैं आप ना, सिविलाइजेशन। अरे बेटा, अल्टीमेटली तो उद्योग है ना, मीनिंगफुल सिनेमा आप नहीं बनाइएगा तो मर जाइएगा, ऐसा तो है नहीं, अल्टीमेटली तो उद्योग है, इंडस्ट्री है। तो मतलब इज ऑलवेज मतलब जिस क्लैरिफाइंग हिमसेल्फ कि अच्छा ये ऐसा ये ऐसा।
अच्छी बात ये है कि केवल अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करने पर आप सभ्यता का भी नहीं जान पाते, आप उद्योग का भी नहीं जान पाते। तो अगर वो दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम लोगों में आएगी। और अच्छी बात ये है कि आप ये देखो कि अमिताभ बच्चन हो चाहे पंकज त्रिपाठी हो, ये जब अच्छी हिंदी बोलते हैं तो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले या अंग्रेजी का कहलाने की इच्छा रखने वाले लोग भी उनको बहुत प्यार से बहुत ध्यान से। तो अच्छी तो हिंदी जो है वो बहुत खिचड़ी की तरह कभी कभी परोस दी जाती है, जिसकी बहुत जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे तरह से अपनी बातों को रखते हैं और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी प्रस्तुति रहती है उसकी, तो मुझे लगता है कि आज भी लोग हिंदी सुनना बेहतर पसंद करते हैं।
गिवन द काइंड ऑफ प्लेस दैट वी लिव इन, हिंदी हैज अ वाइडर एक्सेप्टेंस, बट वही है कि अगर आपको अपने नेटिव स्टेट या नेटिव लोगों के साथ कनेक्ट करना है, यू विल हैव टू गो टू देयर लैंग्वेज। मतलब आई थिंक दिस इज द रीजन वाई ऐसा प्लीज भैया या यू नो थैंक यू भैया या इधर लेफ्ट कैसे जाना है, राइट कहाँ जाना है, ये कैसे होगा, दिस इज अ बेसिक होमवर्क विच आई थिंक एवरीबडी डज। If I have to go to Calcutta or if I have to go to say Bombay, then मेरे को एक राउंड वो सीखना पड़ेगा कि एंड
वो हर जगह का एक चलन है, वो चलन आपको हाँ
एंड इट्स सरप्राइजिंग हाउ मतलब टू गिव वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, मतलब ऐसे बेसिक आपके सब्जी वाले भैया और ऑटो वाले भैयों का ऐसे एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। क्या उधर वहां पे दादा बोल दीजिएगा कैलकटा में, या एकदम भाऊ बोल दीजिएगा बीच बॉम्बे में. एंड एंड इज जस्ट सो सरप्राइजिंग बिकॉज बॉम्बे सीम्स टू बी सच अ कॉस्मोपॉलिटन, बट इतना लेकिन देर इज दिस कनेक्ट विद द लैंग्वेज. तो वही है, एंड विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो आई बिलीव, कि जब आप किसी से कनेक्ट अगर आपको करना है 1-to-1, देन वो एक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर फ्लुएंसी, इन्फ्लुएंस, कंफर्ट लेवल, अगर कोई बात अगर कोई कर कहनी है तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही हो, हिंदी, नॉन हिंदी, विच एवर मदर टंग दैट यू हैव.
इसीलिए देखो कि नेता गण कहीं जाते हैं तो अपनी शुरुआत कम से कम वहां के लोकल भाषा में करना चाहते हैं. बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बात समझ में आ गई है कि अगर उनको वर्कर से डायरेक्टली कनेक्ट होना है या लोकल कम्युनिटी को एड्रेस करना है तो उनको हिंदी या वो जहाँ भी है मराठी, बांग्ला, तमिल, पंजाबी, गुजराती, उस भाषा में बात करना बहुत जरूरी है. तो लोग अब सीख रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है कि आप अंग्रेजी जो है वो बोलेंगे तभी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं. और जो हिंदी को लेकर एक शर्मिंदगी थी, लैंग्वेज को लेकर एक जो शर्मिंदगी थी, वो ग्रेजुअली दूर हो गई है. ये अच्छी बात.
चलिए ऑन दैट नोट खाना पकाया जाए. ठीक है,
खाना पकाइए, दिवाली आ रही है, सफाई करिए.
काफी चीजें हैं एंड हम वापस आपको लगाते हैं फॉर सम अदर इनसाइट दैट आई वुड वांट इन लाइफ. ठीक है,
श्योर,
चलो
बाय
बाय.